हरे कृष्णा। तो अभी हम जिस स्थान पर बैठे हैं वो भी बहुत अद्भुत स्थान है। नित्यानंद त्रयोदशी के दिन यहाँ पर पहुंच पाना भी बड़ी भाग्य की बात है। कैसा है अभी ब्रज जो है वो भी धीरे धीरे उसकी जो परम शांति परम सात्विकता वो सब नष्ट होते जा रही है। बहुत सारे बड़े बड़े आश्रम रोड हॉर्न कैफे बैरिकेडिंग भीड़ भाड़ स्टैम्पीड धक्का मुक्की इसमें ही पूरा समय बीत जाता है आजकल। और धाम का जो एटमोसफेयर है ना उसको इतना आसानी से हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये काम्य वन है जहाँ पर आप आए, ये वृंदावन के बाद वाला सबसे प्रिय स्थान है विष्णु का, प्रति वृंदावन कहते हैं इसको। और काम बन जाए तो काम बन जाए ऐसे भी कहते हैं, मतलब क्या होता है उसको, काम्य वन जो आएगा उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती। इसलिए यहाँ पर बैठकर कोई भौतिक कामना मत करना। कोई सोचता होगा कि मुझे अच्छी लड़की पत्नी के रूप में मिले, ये कामना भी पूरी हो जाएगी यहाँ पर आने से, हो सकती है, लेकिन ये मांगना नहीं, क्योंकि आप अपनी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर रहे हो। कुछ चीज ऐसी है जो कुछ समय के लिए मिलती है, कुछ समय के बाद नष्ट हो जाती है, ऐसी चीजों की कामना यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। जो चिरंतन चीजें हैं, जो आत्मा की संबंधित चीजें हैं, जो आत्मा के लिए कल्याणकारी चीजें हैं, जो आत्मा का प्रगति के लिए सहायता कर सकती है, ऐसी दिव्य इच्छाएं यहाँ पर आती हुई वो निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगी। ये काम्यवन का बड़ा महत्व है। संक्षेप में काम्यवन इतना महान वन है, एक तो यहाँ पर सख्य लीला वात्सल्य लीला और माधुर्य लीला का भी प्रदर्शन हुआ है, और साथ साथ कृष्ण ने जितने धामों को वृंदावन धाम में आश्रय दिया है उसमें से मेजोरिटी धामों को तीर्थों को काम्य वन में आश्रय दिया है। आदि बद्री केदारनाथ फिर रामेश्वर सेतुबंध श्रीलंका और 68,000 तीर्थ 84,000 तीर्थ निर्मल कुंड में, ऐसे अद्भुत अद्भुत स्थानों को यहाँ पर भगवान ने आश्रय दिया। यहाँ पर आप बैठे हैं, क्षीर सागर है, जैसे क्षीर सागर, ऐसे क्षीर सागर भगवान ने 5 जगह प्रकट किया है वृंदावन में, उसमें से एक स्थान है ये क्षीर सागर। कौन सा है, जहाँ पर क्षीर उदक शाही विष्णु निवास करते हैं और जो संकर्षण के अवतार हैं, जो संकर्षण स्वयं नित्यानंद प्रभु के विस्तार हैं और नित्यानंद प्रभु इनके माध्यम से इस विश्व का और आध्यात्मिक जगत का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ऐसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं और चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है। तो इसमें परशुराम जी ने 9 कुंड बनाए हैं, टोटल 1100 से अधिक कुंड का निर्माण इस काम्य वन में हुआ है और बहुत अद्भुत 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 बहुत चटपटी लीलाएं यहाँ पर है। काम्य वन में सबसे अधिक भगवान के चरण चिन्ह है, हस्त है, हस्त चिन्ह है, पाद चिन्ह है। गर्ग संहिता में लिखा है कि कृष्ण का या राधारानी का या बलराम जी का या भगवान का हस्त पाद चिन्ह जहाँ दर्शन करते हैं भक्त लोग, वो इस दुनिया में दोबारा लौट के नहीं आते, सीधे गौ लोग चले जाते हैं केवल दर्शन करके। तो सबसे अधिक चिन्ह जो है भगवान के हाथों के पैरों के घुटनों के माला के सब काम्य वन में है। साथ साथ में जब पांडवों ने निवास किया था तो भगवान के आदेश से पांडव काम्य वन में आए थे, वहां पर स्थान है उनका, पांडव कुंड है, यक्ष कुंड है, पांडव निवास है। श्री कृष्ण भगवान आए थे यहाँ पर और पांडवों की अवस्था देखकर बहुत ही क्रुद्ध हो गए थे, वेरी वेरी एंग्री, इसे मैं अभी कभी सब विश्व को जो भस्म कर दूंगा। तो युधिष्ठिर महाराज ने उनको समझाया है और भगवान फिर उनको आशीर्वाद दिए हैं। इसी काम्य वन में सूर्यदेव के द्वारा द्रौपदी को अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था। इसी काम्य वन में दुर्वासा मुनि आए थे 60,000 शिष्यों के साथ और वो जो लीला हुई है वो भी यहाँ पर हुई है ऐसे। और इसी काम्य वन में जब पानी मांग लेने के लिए कुंती माता अपने अपने एक एक पुत्रों को भेजती रही, तो लौट के नहीं आए, आखिर में युधिष्ठिर महाराज चले गए। तो जो यक्ष ने प्रश्न किया था ना, तो अद्भुत प्रश्न किए थे, तो सब प्रश्नों का धर्मराज ने उत्तर दिया था और आखिर में प्रश्न पूछा था, अहो आश्चर्यम सबसे बड़ी आश्चर्य की बात क्या है, तो जो लोग मर रहे हैं वो मर रहे हैं सब लोग, लेकिन जो जीवित है वो सोच रहे हैं कि मैं नहीं मरूंगा। ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। ये प्रश्न का उत्तर सुनकर उस ध्वनि जो आवाज आ रही थी, उस दर्शन दिया, वो साक्षात धर्मराज यमराज थे, यक्ष के रूप में आए थे। तो वो भी लीला यहाँ पर ही हुई है, वो भी कामेश्वर महादेव के नीचे वो कुंड है यहाँ पर लीला हुई थी। उसके आसपास ही उनका घर भी है जहाँ पर पांडव ने निवास किया था। श्री कृष्ण भगवान ने आकर उनको यहाँ पर बताया था द्रौपदी को सबको कि आप अधिक मास का व्रत करो ताकि आपका भाग्य जो है उसका उदय होगा। तो यहीं पर द्रौपदी पांडवों ने मिलकर अक्षय अधिक मास का व्रत किया था। इस वर्ष भी आश्विन मास अधिक मास आने वाला है। तो ऐसे अद्भुत जगह है ये, और जहाँ पर हम बैठे हैं वो भोजन थाली के नाम से प्रसिद्ध है। भोजन थाली की लीला ऐसी है कि एक बहुत बड़ी बहुत राजा था एक बड़ा, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, और उसकी एक कन्या थी, वो भी उनके साथ में युद्ध में जाया करती थी। और वो पूरे बचपन से लेकर पूरी युवा अवस्था में आने तक हर साल हर दिन वो अपने पिता के साथ में युद्ध में जाती थी, और पिता हर साल में युद्ध में जीते थे और अपनी सीमाओं का विस्तार करते थे। लेकिन बहुत समय बहुत साल हर युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद में एक युद्ध में राजा परास्त हो गए। तो उस समय क्योंकि पराजय का टेस्ट उनको नहीं था ना, ओनली विजय विजय का ही टेस्ट था, वो भी अच्छा नहीं होता है कभी। इफ यू आर ऑलवेज सक्सेसफुल इज नॉट गुड फॉर लाइफ। एक बार बीच में अगर हम लोग अयशस्वी होते हैं ना, समटाइम्स वी आर अनसक्सेसफुल, दैट गिव्स अस मोर रियलाइजेशन मोर लर्निंग्स देन द सक्सेस। सक्सेस मेक्स यू प्राउड, सक्सेस मेक्स यू प्राउड एंड बिकम वेरी एलिगेंट, बट फेल्यूर मेक्स यू हम्बल एंड लर्न अ लॉट फ्रॉम विद इन। सक्सेस कैन मेक यू ग्रो एक्सटर्नली, बट फेल्यूर विल ग्रो हेल्प यू ग्रो इंटरनली। तो जैसे ही वो हार गई ना, बहुत उदास हो गई, वो एकदम विरक्त हो गई, सब कुछ छोड़ छाड़ के इधर आ गई। तो तपस्या किया कि हाउ, व्हाट इज सक्सेस, व्हाट इज फेल्यूर, व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज लाइफ, व्हाट इज डेथ, इस जीवन का पर्पज क्या। ऐसे बहुत सारे किल्लोड़ हो गया उसके मन में प्रश्नों का। और यहाँ पर तपस्या किया तो श्री कृष्ण भगवान ने उनको दर्शन दिया। तब उसने वरदान मांगा कि मैं एक शिला बनना चाहती हूँ पर्वत की, जिस पर्वत की शिला पर भोजन की थालियां होंगी और उस पर बैठकर आप लोग भोजन करेंगे कृष्ण और आपके सखा सब मिलकर। तो ये जो शिला है यहाँ पर, ये इंद्रसेन शिला कहलाती है। राजा का नाम इंद्रसेन था, अभी याद आया मुझे, तो राजा का नाम इंद्रसेन था, तो ये पर्वत इंद्रसेन पर्वत के नाम से जाना जाता है। इसमें जो शिला बनी हुई है वो राजकन्या शिला बनी हुई है, और उसके अंदर वो भोजन थाली कटोरा बना हुआ है। और श्री कृष्ण भगवान अपनी बाल लीला में यहाँ पर आकर बड़े ही प्रेम से कमलाकार बैठते हुए उस शिला में बैठकर भोजन करते थे। तो आज भी यहाँ पर इस शिला के थाली के अंदर भोजन रखकर उसको भोग लगाने का बड़ा महत्व है। तो हमारी यात्रा में हम जब भी आते हैं तो हमारा ब्रेकफास्ट हम लोग यहीं पर ऑफर करते हैं, अनऑफर्ड फूड लेके आते हैं, यहाँ पर ऑफर करते हैं और यहाँ बैठ कर सब लोग प्रसाद देते हैं हर यात्रा में। आज उत्तरायण त्रयोदशी है तो फिर वो इंतजाम नहीं हुआ। फिर आप आगे कोई आएंगे ध्यान रखना, जब भी यहाँ आने का समय आएगा आप बिना भोग लगाया हुआ भोजन यहाँ पर लेके आना और थाली पर रखे उसका भोग लगाना। तो इसके ऊपर भगवान ने अनंत बार भोजन खाया और उस राजकन्या को पूर्ण तरह से गोलोक धाम की प्राप्ति कराई। एक बार यहाँ पर जब भोजन का लीला हो रही थी तो थोड़े से ऊपर के लेवल पर अकेले बैठकर बलराम जी दूध पी रहे थे। तो कृष्ण को और सखाओं को पता चला कि बलराम जी अकेले दूध पी रहे, तो सब लोग भाग के गए और छीना झपटी किया ना, सब उस पर अटैक किया, तो उसके हाथ से जो दूध का लोटा था ना वो लुढ़क गया। और देखिए आप, दूध की धार लिखा है ना वहां पर, ऊपर बैठकर वो मंदिर है ना, उधर बलराम जी बैठे हुए थे, उधर भी एक थाली बनी हुई है, वहां पर बैठकर दूध पी रहे थे वो। तो वहां पर उनके हाथ से जब वो लुढ़क गया तो दूध की धार उस पूरे शिलाओं से ऐसे बहती हुई आई। और यहाँ पर भगवान ने, बलराम जी ने इस लीला के माध्यम से क्षीर सागर को प्रकट किया और क्षीर सागर को आश्रय दिया। ये क्षीर सागर है, दूध का सागर प्रकट हो गया। तो मुझे मत पूछना कि एक लोटे दूध में से क्षीर सागर कैसे प्रकट हो गया, डोंट आस्क मी, बिकॉज़ दैट इज नॉट अ क्वेश्चन टू बी आस्क्ड इन धाम। भगवान एक लोटे में क्या एक चुल्लू भर दूध में से भी क्षीर सागर प्रकट कर सकते, वो क्या नहीं कर सकते। जब उनकी इच्छा होती है तो अपनी दिव्य इच्छा के माध्यम से हम एक चमत्कारिक कार्य कर सकते हैं। जैसे एक पूरे बरगद का पेड़ को एक बीज में रखते कि नहीं, वो हाउ ही डज इट, नोबडी नोज बट ही डज इट। पूरा वृक्ष उसमें अंदर समाया हुआ है, उसी से पूरा वृक्ष का सॉफ्टवेयर उसमें लिखा हुआ है, पूरा पूरा बड़ा पेड़ तैयार होता है। सभी पेड़ ऐसे तैयार होते हैं। तो बलराम जी ने यहाँ पर शिवसागर को प्रकट किया है। फिर यहाँ पर एक बार कृष्ण भगवान बाल सखाओं को लेकर आए थे, तो उन्होंने गेम खेलना तय किया, ये चूज टू प्ले अ गेम। हाँ, उसमें आधा पार्टी, तीन पार्टी बनाया, एक पार्टी ग्वाल बालों को बनाया पुलिस, एक पार्टी ग्वाल बालों को बनाया चोर, और एक पार्टी ग्वाल बालों को भेड़िया बनाया, मतलब बकरी बना दिया, बकरी बनाओ कुछ भी बोलो, स्मॉल एनिमल्स बनाया एक नाटिका में खेल खेलने। और तय किया कि चोर लोग इनको चोरेंगे और पुलिस लोग उनको पकड़ेंगे, ऐसा चोर सिपाही का खेल किया। तो एकदम चालू का खेल, अभी देखो उसमें हमारा ऐसा नहीं है, हम लोग खेलते भी है, कुछ मोबाइल देखते हैं, कुछ फोन करते हैं, बात करते हैं, अपना आपका अटेंशन ऑलवेज डिवाइडेड, यू नो वी आर नेवर फोकस्ड। अभी कलयुग में कैसा है ना, एक व्यक्ति आया मोबाइल नाम का, वो सबका ध्यान चुरा कर ले जा रहा है। एवरी बडी टॉप टू बॉटम इज कैप्टिवेटेड, कंप्लीटली कैप्टिवेटेड, एनामोर्ड एंड मिसडायरेक्टेड बाय वन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड मोबाइल। और आप कुछ भी काम, कुछ भी, सुबह जब से लेकर भोजन बनाना और काम करना, ऑफिस में दांत को ड्रिलिंग कर रहे हैं तभी भी टॉन्ग टॉन्ग बजता है तो भी बात करते बीच में, और बीच में देख लेते कौन किसका मैसेज आया कि नहीं आया। जैसे बच्चे को देखते ना हाथ लगा के नैपी गीला हो गया नहीं हुआ, जैसे बार बार उसको पता है, आपको सब माताओं को मालूम है, बार बार ऐसे लगाना पड़ता है, गीला तो नहीं हुआ, गीला तो नहीं हुआ, हुआ नहीं लेकिन बार बार लगाना पड़ता है, हुआ क्या हुआ क्या। फिर 50 बार हाथ लगाने के बाद एक बार गीला मिलता है फिर चेंज करते हैं। ऐसे वो बार बार आया क्या मैसेज, कुछ आया होगा, कुछ आया होगा, बार बार देखते हैं उसको। ये सब सोचने से कभी आपका लाभ होगा, आप उसको दूर रख सकते हो कि आई एम जस्ट टचिंग एन नैपी अगेन एंड अगेन, आई शुड नॉट टच दैट। तो वैसा नहीं खेलते थे वो, ये क्यों बता रहा हूं मैं, एकदम एकाग्र होकर समरस होकर बाय बिकमिंग वन विद द गेम दे यूज्ड टू प्ले, पूरा आनंद लेते थे वो। ऐसा नॉट लाइक अस डिवाइडेड कंप्लीटली, एवरीथिंग इज डिवाइडेड, यू नो नथिंग इज फोकस्ड। फोकस करने से बहुत आनंद प्राप्त होता है। तो ऐसे वो चोर तो पूरा चोर के भाव में खेल रहे हैं, भेड़ी भेड़ी बनकर खेल रहे हैं, पुलिस पुलिस बनकर खेल रहे हैं। तो एक उसमें राक्षस आया, ग्वाल बाल बन के आया वो, और चोर की मंडली में घुस गया। तो बहुत देर में क्या हुआ, खेलने के बाद में सब भेड़ियों की संख्या एकदम, अभी कैसा है ना, आप चोर पकड़ेंगे तो पुलिस आके उनको पकड़ेंगे, वो वापस रिसाइकल करेंगे ना उनको, दे विल बी रिसाइकल ना, दे विल नॉट बी लॉस्ट। चोर पकड़ेंगे तो पुलिस आके उनको पकड़ेंगे और फ्री करेंगे, फिर वापस चोर पकड़ेंगे फिर फ्री करेंगे, तो संख्या इज कॉन्स्टेंट ना अमंग्स यू, टोटल नंबर ऑफ ग्वाल बाल इज कॉन्स्टेंट, वन प्लस वन ऐसे कॉन्स्टेंट था। लेकिन कृष्ण ने देखा कि अरे ये भेड़ियों की संख्या अब कम होती जा रही है, भेड़े बचे ही नहीं कुछ। तो कृष्ण बलराम बैठ के सोच रहे हैं क्या हुआ, तो देखते हैं सबको स्कैन करते हैं कौन कौन है उसके अंदर, तो एक दिखता है उनको, तो देखिए कितना सुंदर बात है, कृष्ण बलराम भगवान बोल रहे हैं ये जो ग्वाल बाल है ना वो सुबह हमारे साथ में नहीं आएगा। इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट, वेरी डीप स्टेटमेंट। इसका मतलब इतने करोड़ों ग्वाल बालों को लेकर चलते थे लेकिन हर बॉय को जानते थे वो कि कौन हमारे साथ में आया है। हर ग्वाल अपने बछड़ों को जानते थे कितने बछड़े हमारे साथ में आए हैं, इमेजिन। वैसे उन्होंने पहचाना ना वत्सासुर को भी, तो बछड़ा बनकर आया था, वो कहने ये बछड़ा जो है ना वो हमारा बछड़ा नहीं है, वो बाहर से आया, इसकी आंखों देखो कितनी राक्षस की आंखें हैं, देखो कैसी उसकी नजर है देखो। तो दोनों एकदम डायग्नोज करते कि हाँ यही है, तो भगवान उसके पीछे जाते हैं और उसका पकड़ते उसको, तभी वो तुरंत अपना विशाल रूप दिखा देता है और तुरंत खेल बंद हो जाता है। सडनली देखो गेम स्टॉप्स एंड देन सब लोग बाजू हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहा था, वो भेड़िए बने हुए बालकों को कैप्चर करके उनके आगे एक पहाड़ है वो पहाड़ की गुफा में जाके बंद करता था, और आते वक्त एक पत्थर रख के वापस आता था और दूसरे आदमी को लेकर वहां पर जाता था, और सब लोग चिल्ला रहे हैं अंदर गुफा के अंदर। महाराज जी बताते हैं हम लोग भी ऐसे ही दुख भोग रहे हैं बंद गुफा में, जन्म मृत्यु जग रहा है व्याधि का, है ना। तो फिर कृष्ण उसको पकड़ते हैं, तो फिर वो अपना रूप प्रकट करता है, फिर उसका रूप जो है ना पूरा ऐसा ह्यूज आकाश में वो फैल जाता है। तो कृष्ण भी सबके सामने उतना बड़ा रूप धारण करते हैं और दोनों फिर आकाश में युद्ध करना शुरू करते हैं। कभी जमीन पर कूद रहे हैं, कभी मंडलाकार घूम रहे हैं, कभी ऐसे वो कैसे होते कुश्तीगीर गोल गोल घूमते हुए छलांग लगाते हैं, ऐसे करके उन्हें आकाश में छलांग लगाया, फिर पृथ्वी पे छलांग लगाया, फिर आकाश में छलांग लगाया, तो कहते हैं पृथ्वी थरथर कांपने लगी, इतना भयंकर युद्ध है सर। पृथ्वी जो है ना वैसे सो स्कैर्ड ट्रेम्बलिंग इन फियर। तो बलराम जी आराम से खड़े थे, वो देख रहे थे हमारा कन्हैया तो बहुत बहादुर है। तो उन्होंने कहा कि अपना जो खेस है ना दुपट्टा ऐसा पृथ्वी पर गिराया और अपना लेफ्ट पैर है ना उसका बड़ा अंगूठा जो है वो दबाया पृथ्वी पर और थर थर थी पृथ्वी को स्थिर कर दिया। डोंट वरी आई एम स्टैंडिंग हियर, मेरा दुपट्टा मेरा पैर आपकी रक्षा करेगा, आप निश्चिंत हो जाओ। तो पृथ्वी को उन्होंने स्थिर किया है, वहां पर उनके चरणों का चिन्ह निर्माण हो गया है, यहाँ पर उन्होंने इस भयभीत पृथ्वी को स्थिर किया। तो बलराम जी का चिन्ह वहीं पर है, दिखाएंगे आपको। फिर वो युद्ध में जब कूदे पहाड़ पर तो भगवान ने जो माला पहनी थी ना वो भी लग गई, टकरा गई, तो उधर माला के निशान बने, जहां पर भगवान गिरे वो पैर के निशान बने, कभी कभी हाथ के बल पर गिरे तो हाथ के निशान बने, ऐसे हाथ के माला के पैर के घुटने के अलग अलग जगह निशान है उस पहाड़ पर। हाँ लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट है चढ़ना, उधर चोटी तक दर्शन है उसका। इस प्रकार से आप कहेंगे वो पत्थर पर कैसे निशान आए, क्योंकि पत्थर भी भाव से विभोल होकर पिघल रहा है, पत्थर पत्थर नहीं रहा है, जब भगवान के स्पर्श हो रहा है भगवान के स्पर्श से वो पिघल रहा है, तो उसके चरण चिन्ह वहां पर निर्माण हो गए, हमारे लिए बनाया था महाराज भगवान ने। उसके बाद में भगवान ने उस राक्षस का नाम था व्योमासुर, उसका भगवान ने वध कर दिया, उसका वध करके गुफा खोलकर सभी ग्वाल बालों को रिहा कर दिया और फिर सब लोग अपने घर चले गए। तो ये व्योमासुर जो है ये एक प्रकार का पंच महाभूत में से एक है, तो भगवान सबसे बड़े पर्यावरणवादी है, ही इज अ टॉप मोस्ट ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट लॉजिस्ट नो। उन्होंने कालिया के लिए जल में प्रवेश करके जल का शोधन किया, दैट मीन्स ही प्योरीफाइड द वाटर प्रिंसिपल। जब उन्होंने तिलावर्त को मारा तो उन्होंने वायु तत्व को प्योरीफाई कर दिया, व्योमासुर को मारा तो अवकाश तत्व को स्पेस तत्व को शुद्ध कर दिया, और माटी खाया और माटी खाकर उन्होंने पृथ्वी तत्व को शुद्ध कर दिया, और क्या बचा, अग्नि को दो बार प्राशन किया दावानल और अग्नि को शुद्ध कर दिया। तो भगवान सबसे बड़े पर्यावरणवादी हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भगवान ने बहुत चटपटी मिला करके सबको आनंद दिया और आपको भी आनंद आया होगा ऐसे हमारी उम्मीद है, क्योंकि भगवान की लीला जो है ना वो कितना भी हृदय दुख भरा हो, कष्ट भरा हो, पीड़ा भरा हो, अगर आप समरस होकर भगवान की लीलाओं को सुनेंगे उस स्थिति में भी तो आप दुख और कष्ट मुक्त हो जाएंगे। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग शांति में भगवान की लीला सुनकर आनंद लेते हैं, लेकिन जब दुख आता है ना तो दुख में इतने खो जाते हैं कि उस समय याद नहीं करते, करे हमको इसका सहारा लेना है, भगवान के नाम का, कीर्तन का, कथा का, पढ़ने का, श्रवण का, भगवत सेवा का सहारा लेना, ये हमारे लिए एंटीडोट है, उसका याद नहीं आता उसमें, इतना दुख हमको ना क्या कहते हैं हावी हो जाता है हमारे ऊपर। तो इसलिए हमको याद करके भक्तों को दूसरों को याद करवा के बताना चाहिए कि आप कृष्ण लीला पढ़ो, और निश्चित रूप से कृष्ण लीला में समरस होने पर, अगर पढ़ने में नहीं दे रहा तो सुनो, कोई बता रहा है तो वे सुनने से बहुत ज्यादा आनंद आता है, तो सुनकर हम अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं। गोपियां भी कहती हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम, हमारा जो तप्त जलता हुआ जीवन है उसकी उसका उपाय एक ही है, तव कथामृतम, आपका कथामृत को पान करने से सब दुख भरे अग्नि भरे तक जलते हुए जो हमारे किस्से हैं सब नष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।